इंडियाना रेस्टोरेंट में सारा काम करवाने के बाद आर्या अपने घर ओबरॉय मेंशन में पहुंचा। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकला, उसकी नज़र घर की दूसरी तरफ बने बड़े से यार्ड पर गई। वहां अभी अभी एक चॉपर लैंड हुआ था। आर्या अंदर जाने के बजाय वहां खड़ा होकर उस तरफ देखने लगा। उसमें से सबसे पहले एक लगभग 55 साल का आदमी निकला। वो आर्या के पिता मिस्टर आशुतोष सिंह ओबरॉय थे। उन्होंने नीला ब्रांडेड सूट पहन रखा था। उनके साथ में आर्या की हमउम्र एक इंडो ब्रिटिश लड़की थी। बाहर सर्दी होने के बावजूद उसने काफी छोटे कपड़े पहन रखे थे। गले में फैशन के लिए लगाया हुआ स्कार्फ उस सर्दी में किसी काम का नहीं था। मिस्टर ओबरॉय ने उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ा और होठों पर गहरा किस किया। उन्हें देखकर आर्या ने अपनी नज़रें घुमा ली। कुछ देर में आशुतोष उसके साथ घर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र आर्या पर पड़ी। आर्या ने उन दोनों की तरफ गुस्से और नफरत भरी निगाहों से देखा, तो वहीं मिस्टर ओबरॉय ने उसे देखकर एक हल्की मुस्कुराहट दी। अब वो अंदर जाने के बजाय उस लड़की के साथ आर्या की तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें टाइम से घर आ जाना चाहिए, देर रात तक ऑफिस में काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उन्होंने आर्या के पास आकर कहा। उनकी बातों में आर्या के लिए फिक्र थी। उनकी बात सुनकर आर्या ने एक तंज भरी मुस्कुराहट दी और जवाब में कहा, आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी मिस्टर ओबरॉय? ठीक उसी दिन से जिस दिन तुम्हारी माँ ने पहली बार प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सुनाई थी, मिस्टर ओबरॉय का जवाब सुनकर आर्या ने कहा। अच्छा, आपको वो याद भी है? अपनी बात कहकर उसने उनके साथ आई लड़की की तरफ देखा। लगता है आपकी तीसरी वाइफ का यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। मिस्टर ओबरॉय उसकी बात का कोई जवाब देते उससे पहले वो लड़की बीच में बोल पड़ी, डार्लिंग, हु इज़ ही? कैरिन, बेबी, ही इज़ माई एल्डेस्ट सन आर्या, उन्होंने उसे आर्या का परिचय दिया। हैंडसम ही इज़, बोलते हुए उस लड़की कैरन ने आर्या की तरफ एक सरसरी निगाह डाली। वो आर्या से मिलने के लिए आगे बढ़ी तो वो कुछ कदम पीछे हो गया। कैरन के कदम वहीं रुक गए। मिस्टर ओबरॉय हल्का सा हंसकर बोले, हाँ, मुझ पर जो गया है। बिल्कुल भी नहीं डैड, मैं आपके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, आर्या ने तुरंत जवाब दिया। क्या आपकी कैरन के बारे में घर पर सबको पता है? पता नहीं है तो अब चल जाएगा। आर्या, आज शाम को एक ग्रैंड पार्टी होगी जहाँ मैं ऑफिशियली अपने और कैरन के रिलेशन को अनाउंस करने वाला हूँ। अब क्या सारी बातें यहीं करोगे? चलो अंदर चलते हैं, मिस्टर ओबरॉय ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ कैरन की तरफ बढ़ाकर कहा, कम बेबी। मिस्टर ओबरॉय उस लड़की का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें मायरा थी। वो बाहर निकली। उसने पीछे से मिस्टर ओबरॉय को उस लड़की के साथ जाते हुए देखा। मायरा ने उन्हें देखने के बाद एक नज़र आर्या की तरफ डाली, जो सर्द निगाहों से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके देखने के लहजे से वो समझ गई थी कि वो औरत कौन हो सकती थी। वो हर बार ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? मुझे लगा था क्रिस्टी के साथ वो सबसे लंबे टाइम से है, पर ये उनके लिए भी लॉयल नहीं है, मायरा गुस्से में चिल्लाकर बोली। उसकी आवाज़ सुनकर आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये सब मायरा के लिए चिढ़ा देने वाला था। क्या तुम्हें सच में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? तुम्हें इतनी बड़ी बात को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए, मायरा उस पर चिल्लाई। मैंने इग्नोर करना सीख लिया है, बेहतर होगा तुम लोग भी सीख लो, कहकर आर्या वहां से जाने लगा। अचानक वो रुका और मायरा की तरफ मुड़कर बोला, हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता तो कल रात इंडियाना के बाहर आकर पूछ सकता था तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तुम एक बहुत बुरी जासूस हो मायरा। आर्या की बातों से साफ था कि उसने कल रात मायरा को रेस्टोरेंट के बाहर देख लिया था। उसकी बात सुनकर मायरा की नज़रें झुक गईं। आर्या ने आगे कुछ नहीं कहा और अंदर जाने लगा। उसके पीछे पीछे मायरा भी आ रही थी। मिस्टर ओबरॉय अंदर पहुंच चुके थे। अंदर आते ही उन्होंने हाउस हेल्पिंग स्टाफ के जरिए पूरी फैमिली को घर के लिविंग एरिया में इकट्ठा किया। वहां सामने की तरफ आशुतोष क्रिस्टी के साथ खड़े थे। उनके पास ओबरॉय फैमिली के सबसे बड़े मेंबर मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय थे, जो लगभग 80 साल के थे। वो आर्या के दादाजी थे। उन्होंने स्टाइलिश नज़र का चश्मा लगा रखा था और सिर के बीच कूचे बालों को परफेक्टली सेट कर रखा था। उनके कपड़े भी उनकी उम्र के हिसाब से काफ़ी स्टाइलिश थे। उनके पास में शौर्य और उसकी माँ क्रिस्टी खड़ी थी। क्रिस्टी की आंखें नम थीं। उन सबके बीच आर्या और मायरा भी वहाँ पहुँचे। उन दोनों के पहुँचते ही आशुतोष बोले, मुझे खुशी है कि हमारा सारा परिवार यहाँ एक जगह इकट्ठा है। लंदन में रहने के बावजूद हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनकी बात सुनकर क्रिस्टी बोली, आप सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे तो बेहतर होगा। ओके, आशुतोष ने मुस्कुरा कर कहा। क्रिस्टी जान, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, पर अब मेरा तुमसे मन भर गया है। मैंने अपनी लाइफ के 18 साल तुम्हें दिए हैं। देखा जाए तो ये बहुत लंबा टाइम होता है। ये टाइम आपने मुझे नहीं, मैंने आपको दिया है। मैं चाहती तो आपकी एक्स वाइफ लीजा की तरह आपको छोड़कर जा सकती थी, क्रिस्टी बोल रही थी। उसके मुंह से अपनी माँ लीजा का नाम सुनकर मायरा गुस्से में उस पर बिफर पड़ी। इन सबके बीच में मेरी माँ कहाँ से आ गई? लिसन, आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हों उनमें मेरी माँ को बीच में मत लाइए। वो अब हमारे साथ नहीं रहती।
क्रिस्टी ने मायरा की बात को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे अफेयर्स को लेकर कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। अपने बेटे के लिए इस छोटी शादी को निभाने के लिए तुम्हारे साथ रही और आज तुम इस लड़की के लिए छोड़ रहे हो जो तुम्हारी बेटे की उम्र की है। देखो, उम्र की बात मत करो, प्यार कभी उम्र नहीं देखता। देखा जाए तो उम्र में तुम भी मुझसे 15 साल छोटी हो। बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, शाम तक तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे, उन्हें बिना कोई ड्रामा किए साइन कर देना। डिवोर्स के बाद मैं और कैरन शादी कर लेंगे। जैसे ही मिस्टर ओबेरॉय ने अपनी पूरी बात सबके सामने रखी, आर्या की नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर गई। वो उसकी माँ की फोटो थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। वहीं मायरा ने अपने मोबाइल स्क्रीन को देखा जिस पर वॉलपेपर पर उसकी माँ लीजा की फोटो थी। शौर्य की नज़र अपनी माँ क्रिस्टी पर टिकी हुई थी। तीनों की ही आंखों में गुस्सा और हल्की नमी थी। आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे इन सबसे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। वहीं शौर्य और मायरा गुस्से में आशुतोष को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। मिस्टर विक्रम सिंह ओबेरॉय भी चुपचाप खड़े कैरन की तरफ देख रहे थे। डैड, आप इस घर के बड़े हैं, प्लीज आप तो कुछ कहिए। क्रिस्टी ने उम्मीद भरी नज़रों से विक्रम सिंह ओबेरॉय की तरफ देखा जो घर के सबसे बड़े थे। अगर मेरी बात सुनी जाती तो आर्या की माँ बंधन के बाद इस घर में कोई और औरत आशु की पत्नी बनकर कभी नहीं आती, विक्रम दी ने जवाब दिया और सामने लगी आर्या की माँ बंधन की तस्वीर की तरफ देखा। मेरे लिए इस घर की बहू हमेशा से बंधन ही रही है, बाकी ये यहाँ किसी को भी लेकर आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, तुम चाहो तो डिवोर्स के बाद भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझे किसी भी हाल में उन पेपर पर तुम्हारे साइन चाहिए, आशुतोष ने कहा। आप मेरी मॉम के साथ गलत कर रहे हैं डैड, ये सरासर नाइंसाफी है, ये औरत यहाँ नहीं रह सकती, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, शौर्य चिल्लाकर बोला।
ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी इस घर से निकाल देता हूँ। तुम्हारे नाम के आगे से ओबेरॉय हट जाएगा तो तुम्हारी भी कोई औकात नहीं रहेगी। घर के बाकी बच्चों से कुछ सीखो, वो भी यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं तो तुम भी एडजस्ट करना सीख लो, आशुतोष ने दो टूक जवाब दिया और कैरन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गए। वहां कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप्पी छाई रही। मायरा ने एक नज़र क्रिस्टी और शौर्य की तरफ देखा और फिर कहा, आपके साथ तो ये सब होना ही था, कहते हैं इंसान के कर्म उनके पास लौट कर आते हैं, मेरी मॉम की भी लाइफ आपने इसी तरह बर्बाद की थी, ये समझ लीजिए जो आपने उनके साथ में किया वही आपके साथ हो रहा है। अपनी बात कहकर मायरा वहां से अपने कमरे में चली गई। शौर्य ने आर्या की तरफ देखकर कहा, आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना? कंग्रेचुलेशंस मिसेज ओबेरॉय, आर्या ने हल्का मुस्कुराकर कहा और वहां से चला गया। उसके रवैये से साफ लग रहा था जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। डिस्कस्टिंग, कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि उनके डिवोर्स पर बधाइयां दे रहा है, शौर्य ने गुस्से में कहा। यही वजह है कि हम इनसे नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत, ये किसी का प्यार डिजर्व ही नहीं करते। आर्या वहां से अपने कमरे में जा रहा था, उसके कानों में शौर्य की आवाज़ आ रही थी लेकिन वो बिना किसी भाव के ऊपर जा रहा था, मानो उसे सच में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। विक्रम सिंह ओबेरॉय भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। कहाँ जा रहे हो ड्यूड, ओबेरॉय फैमिली में नए मेंबर का स्वागत नहीं करोगे, उन्होंने पीछे से आर्या को आवाज़ लगाई। आर्या उनके लिए रुक गया। जब वो उनके पास पहुंचे तब उसने हल्का हंसकर कहा, फैमिली, मुझे तो ये किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लगता। थैंक गॉड मैं अपना ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बिताता हूँ, वरना मैं भी इन्हीं की तरह पागल हो जाता। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा अपना अलग घर ना हो। अब आगे तुम मेरी तारीफ में कुछ कहोगे या मैं बोलूं? वो दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। मैं ही बोल देता हूँ, आर्या ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आगे कहा, इस घर से आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, आप यहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहते। सच कह रहा हूँ दादू, आप वन एंड ओनली वजह हैं जो मैं यहाँ पर कदम रखता हूँ, वरना आर्या सिंह ओबेरॉय के पास पैसों की कमी कहाँ, जो आशुतोष सिंह ओबेरॉय अपने बाकी बच्चों को पैसों के दम पर अपने पास रखता है, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो अपने बड़े बेटे को पैसों का हवाला दे सके। सच में आर्या, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने अपने दम पर आज बहुत कुछ कर दिखाया है, विक्रम जी ने आर्या की बात को बीच में काट कर कहा। बोलते वक्त वो थोड़ा इमोशनल हो गए। मैं उनका बेटा नहीं हूं दादू, आर्या ने सर्द लहजे में कहा। चलो अब छोड़ो भी, घर में एक और नई मेंबर आने वाली है, उस दुख में पार्टी करते हैं, एक शाम वर्ल्ड की सबसे अनहैप्पी फैमिली के नाम। आर्या ने उनकी बात पर हामी भरी और उनके साथ ऊपर टेरेस पर जाने लगा। दोनों वहां अक्सर अच्छा वक्त बिताते थे। आर्या के लिए उस परिवार में विक्रम सिंह ओबेरॉय के अलावा और कोई अपना नहीं था। वैसे तो उसका ज्यादातर समय ऑफिस में ही बीतता था, लेकिन वो एकमात्र वजह थी जो वो ओबेरॉय मेंशन में कुछ वक्त बिताने के लिए आता था। सुबह के 8 बज रहे थे, शिवी एक फ्लैट के आगे थी। पूरी रात बाहर रहने की वजह से वो सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी और चेहरे पर थकान थी। वेलकम टू द हेल शिवी, उसने खुद से कहा और अपना हाथ डोरबेल बजाने के लिए बढ़ाया। काफी देर डोरबेल बजाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो शिवी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मौजूद ही ना हो। थकावट के मारे शिवी वहीं दरवाजे का सहारा लेकर नीचे बैठ गई। ये दुनिया के सभी नमूने मेरे हिस्से ही क्यों आए हैं, पता नहीं कब इन सबसे छुटकारा मिलेगा और वापस मुंबई जा पाऊंगी, बोलते वक्त शिवी के चेहरे पर उदासी के भाव थे।
अचानक दरवाजा खुला। शिवी दरवाजे का सहारा लेकर बैठी थी। डोर खुलने की वजह से वो पीछे की तरफ गिर गई। हेलो दोस्तों, अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स भी जरूर दीजिएगा। कहानी के आगे के भागों के लिए बने रहेंगे मेरे साथ, और प्लीज कॉमेंट के जरिए सपोर्ट कीजिए।